आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़ा रहता
हूँ। एक बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे। संसार के परम धारा पर अध्यात्म की छाप छोड़ने वाले रामकृष्ण, महावीर और बुद्ध के इस भारत देश में एक पूज्य धरती के पटल पर आज आपका, आपके ही घर में, आपके ही आश्रम में, मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आपका अभिनंदन।
जय गुरुदेव।
एक चीज अपने जीवन में हमेशा बना के रखना कि जो जीवन आप जी रहे हो उसका अर्थ हो और वो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने। और जीवन में हमेशा एक काम करना कि किसी भी बड़े चीज को छोटा करके मत देखना। तुम जब कहीं किसी को कुछ बताओगे और तुम भक्त हो, जो भक्त नहीं है उसको उस पर डाउट आएगा, शक आएगा, उसे छोटा करेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये ही हो सकता है। मेरे बंधुओं, हनुमान के जीवन में जो जो हुआ वो राम की कृपा तो थी ही, लेकिन हनुमान की भक्ति की ज्यादा कारण है। हनुमान की भक्ति आनंद के जीवन में जो जो हुआ वह गुरु कृपा तो थी बुद्ध की, लेकिन आनंद की भक्ति थी कि जो इतनी घटनाएं घट गई, इतनी जीवन में कम उम्र में इतनी सारी चीज जान गए। मेरे बंधुओं, यही हमारे जो जीवन है उसे हमेशा ही देखना कि उसे किसी भी चीज को, बड़े चीज को छोटा करके मत देखना। कारण कि हम छोटे देखते देखते खुद छोटे हो जाते हैं, छोटे बोलते बोलते खुद छोटे हो जाते हैं, छोटे सोचते सोचते खुद छोटे हो जाते हैं। बड़ा देखो, बड़ा बोलो, बड़ा सोचो और बड़ा करो।
जय गुरुदेव।
और कोई भी चीज तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, असंभव नहीं है। इस जीवन में हर चीज संभव है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है तुम्हारे लिए। बस करने का अपने अंदर संकल्प रखो और उस संकल्प में विकल्प न रखो, सिर्फ संकल्प रखो, देखना परमात्मा आके पूरा करा जाएगा। शुरुआत करना तुम्हारा काम है, पूरा करना उसका काम है। शुरुआत करना तुम्हारा काम है और पूरा करना उसका काम है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में दुख आएगी, तकलीफें भी आएगी, तरह तरह की समस्याएं आएगी, लेकिन एक चीज जान के चलना, जब भी दुख आए उसको थैंक्स बोलना, कहना कि वाह, मुझ पर तुम्हारी इतनी विश्वास है कि मेरी पूरी परीक्षा ले रहे हो, मुझ पर तुम्हारी इतनी विश्वास है कि पूरी परीक्षा ले रहे हो और मेरे बंधुओं कभी भी समस्या के पास आकर भगवान के सामने आकर मत कहना कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, समस्याओं से कह देना कि मेरा भगवान बहुत बड़ा, मेरा परमात्मा बहुत बड़ा है, तुम उसके सामने क्या हो, कुछ भी नहीं हो। मेरे बंधुओं, हमारे जीवन में मित्रता, दोस्ती, तुम हजार दोस्त अपने जीवन में बना लो ये कोई ज्यादा माने नहीं रखता, लेकिन एक दोस्त को जीवन भर निभा दो ये बहुत बड़ा माने रखता है। एक दोस्त के साथ जीवन भर निभा दो, तुम हजार गुरु बना लो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी अच्छे गुरु के साथ जीवन निभा दो तो जरूर मुक्ति मिलेगी, जरूर। तो एक बार की बात है कि एक बुद्धि माता थी और वो भिक्षाटन करती थी, रोज भगवान को भोग लगाती थी और भगवान को भोग लगा करके खुद खाया करती थी। 5 दिन उसको भिक्षा नहीं मिला, 5 दिन भोजन नहीं की कर पाई। 6ठे दिन उसे कुछ चन्ना किसी ने दिया, भूजा हुआ, वो चन्ने की गठरी बांधी और अपने कुटीर में लाई जिस झोपड़ी में रहती थी और झोपड़ी से लटका दिया, कहा कही कि आज शाम हो गया, अब कल सुबह मैं भोग लगाऊंगी परमात्मा को और मैं भी उसको लूंगी खाऊंगी। यह करके वो सो गई। इस बीच में 2 चोर प्रवेश किए उस झोपड़ी में, उन्होंने सोचा कि बुढ़िया जो है लगता है स्वर्ण छुपा के रखी है, अपने गहने को बांध करके रखी है, और उन्होंने उस गठरी को निकाल लिया। निकाल के भागने लगे तब तक लोगों ने देख लिया कि चोर है, तो इतना शोर हुआ कि भागते भागते वो एक ऋषि के आश्रम में चले छुप गए, और उसी का नाम था शांदीपानी। तो आश्रम में छुप गए शांदीपानी के, और उन्होंने इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने कहने लगे कि परमात्मा हे गुरु मेरी रक्षा करना, और उन पर कृपा हुई, वो बच के निकल गए, लेकिन वो जो चन्ने की जो गठरी थी वो वहीं छूट गई। तो जो आश्रम की माता जी थी उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उठाया और कहा कि ये चन्ना है, तो उन्होंने रख दिया। इस बीच बूढ़ी माता को पता चला कि कोई उसकी गठरी लेकर के चला गया है चन्ना, तो क्रोध में गुस्सा बहुत, आदमी को भूख पेट में भूखे रहने पर गुस्सा बहुत आता है, अगर आप स्वस्थ हो बलवान हो तो गुस्सा कम आएगा, कमजोर हो तो गुस्सा ज्यादा आएगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये बिक जाने के लक्षण हैं, और शक्ति कम गुस्सा ज्यादा ये पिट जाने के लक्षण। तो मेरे बंधु, माता जी को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि जो भी उस चन्ने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जन्मों जन्मों तक दरिद्र हो जाएगा जो उस चन्ने को खाएगा। इस बात को माताजी को पता नहीं था, उन्होंने उन्हीं के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ा करते थे और गाय चराया करते थे। तो माताजी ने सुदामा को कहा कि ये चन्ने ले लो, तुम भी खा लेना और कृष्ण को भी खिला देना, दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे, महापंडित थे। मेरे बंधुओं, सुदामा को पता चल गया उस श्राप का, इस चन्ने में श्राप है, जो भी खाएगा वो जन्मों जन्मों तक दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने देखा, सोचा कि अगर ये चन्ना मैं कृष्ण को खिलाऊं तो वो तो दरिद्र हो जाएगा, और मैं भी खाऊं तो मैं भी दरिद्र हो जाऊंगा, और इस चन्ने को फेंक नहीं सकता हूं कारण कि माता जी ने कहा है कि तुम खा लेना। तो उन्होंने एक पेड़ के ओट में छुप करके सुदामा ने उस चन्ने को खा लिया, खाया और 9 जन्मों तक दरिद्र हो गए। मेरे बंधुओं, एक मित्र को बचाने के लिए उसने जहर पी लिया सुदामा ने। यही कारण है कि जब कृष्ण राजा थे और सुदामा जब उनके यहां जाते हैं तो कृष्ण उनका पांव धोते हैं, कृष्ण उनके गले लगाते हैं, कृष्ण उनकी स्वागत करते हैं और सब कुछ उन्हें देते हैं। तो इस संसार में अगर तुम किसी के लिए अच्छे किए हो एक जान लेना, उससे बड़ा अच्छा तेरे जीवन में लौट कराएगा। कुछ भी जो चीज तुम अच्छे किए हो तो लौट कराएगा, और बुरे किए हो वो भी लौट कराएगा। हाँ भले भी देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। अगर तुमने किसी को गाली दिया एक दिन लौट कर वही गाली तेरे पास आएगा, और तुमने दूसरे को गाली देने वाला तैयार कर दिया। तो मेरे बंधुओं मैं आपके जीवन में एक बात कहूंगा कि अपने जीवन में किसी भी बुराइयों को मत आने देना, किसी तरह से आए। गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मैं एक चौथी बात भी कहता हूं कि बुरा मत सोचो, सोचो भी नहीं बुरा। बहुत बार अगर तुम सोचने लगे तो बुरा देखो ना देखो दिमाग अंदर तो रहेगा, कान से सुनो या ना सुनो लेकिन मन में तो रहेगा, मुंह से बोलो या ना बोलो लेकिन अंदर तो रहेगा। तो बुरा सोचो भी मत किसी रूप में, और जो जैसा है संसार में तुम ऐसे ही देखो, जो जिस तरह का है जैसा है। तो बड़े को बड़े तरह से देखो, देखना अर्जुन को, अर्जुन को देखना कि कृष्ण रथ चलाया करते थे और अर्जुन भूल कर बैठा, सोचा कि ये मेरे कोचवान हैं, मेरे रथ चलाने वाले सारथी हैं, लेकिन जैसे ही वो रथ पर चला और कृष्ण चलाना शुरू किए तब अर्जुन ने कहा नहीं नहीं एक कोचवान नहीं मेरा भगवान है, एक कोचवान नहीं मेरा भगवान है। तो मेरे बंधुओं कभी कभी परमात्मा और गुरु भी तेरी सेवा में तेरे कार्य में आते हैं और करते हैं। तो जो कोचवान में भगवान देख लिया वो अपने जीवन के युद्ध को जीत लिया, अपने जीवन के युद्ध को देख जीत लिया। मेरे बंधुओं यह जीवन है, जितनी बड़ी दृष्टि रखोगे उतने ही बड़े बनोगे। अब रही बात जीवन की कुछ समस्याओं का, कुछ कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती है, एक तरह जन्मों जन्म का साइकिल है कि अभी आता है कल चला जाएगा, कल आएगा और चला जाएगा। तो आगे बढ़ते रहना अपने जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते रहना, जीवन को हमेशा पवित्र बनाते रहना। ए 1000 कदम चलने के लिए प्लान करने से अच्छा है कि 2 कदम चल के दिखाओ मंजिल मिल जाएगी, 2 कदम चलकर दिखाओ मंजिल मिल जाएगी। मेरे बंधुओं जब से ये आश्रम बनना शुरू हुआ उसके पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करता था, 11 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 8 साल का मैं समाधि में बैठा करता था। समाधि में जब आप बैठते हो तो जैसा शरीर उस समय आपने रखा है जब लौटोगे तो वैसे ही शरीर आपको मिलेगा जब अपनी आत्मा को लौटाओगे उस शरीर में। देखो उपवास करना अलग बात है कि हम खाना नहीं खाए पानी नहीं पिए, लेकिन समाधि बहुत बड़ी बात है कि आपने शरीर को वहां छोड़ा और अपनी आत्मा को निकाल लिया, प्राण को निकाल लिया। फिर जहां जहां अपने प्राण को लेकर जाना है आप वहां गए, उस लोक में गए, उन्होंने वो सिद्धियां किया, वो कार्य किया और फिर जब समय हुआ तो आप लौट कर आ गए। इस आश्रम बनते हुए बाद में मेरी साधनाएं 3 महीना की होती थी, 2 महीना की होती थी। ये पहला मौका है कि 2 साल की साधना हुई, ये पहला
गुरुवे।
और इसमें आपकी मैं परीक्षा भी लेना चाहता था कि क्या मेरे नहीं रहते हुए क्या आप इस संस्था को चला सकते हो, जब मैं नहीं रहूं तो क्या आप इस संस्था को चला सकते हो। मेरे बंधुओं हमारे बच्चों ने बहुत सेवा दिया, बहुत आगे आए। बाबूजी छलानी, रमेश जी सांखला, शांतिलाल जी मेहता, मेरे बंधुओं और भी और लोगों ने भी इस आश्रम से में आगे आए। मोदी जी हमारे, घनश्याम जी मोदी, मेरे बंधुओं सब लोग, इन लोगों का नाम याद है मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन सब एक होकर आगे आए और इस व्यवस्था को सुंदर ढंग से चलाए। अब मुझे विश्वास हो गया कि कल मैं पूरी तरह भी समाधि ले लूं ये संस्था चलती रहेगी। और मैं आपके दूर नहीं गया था, मैं हर भक्तों के यहां एक एक बार जाकर आया हूं, किसी के यहां 2-2 बार जाकर हर किस घर में गया हूं और उसकी जो दुख है, उसकी जो तकलीफें हैं, उसकी जो कष्ट है मैं सब देखा हूं और लौट कर आया हूं। मेरे बंधुओं जो मुझसे हो सका मैंने किया है और जो नहीं हंस सका उसके लिए हाथ जोड़ता हूँ। जो मुझसे हो सका वो मैंने किया और करूंगा भी। आप अपनी भक्ति को मत हटाना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भक्ति की बरसात हो रही है, आपने पात्र यहां रखा है और वह बारिश इधर गिर रही है तो फिर आपने पात्र यहां रखा, हो सकता है यहां रखे तो यहां गिरे, यहां गिरे तो यहां रखे, इस हटाने में आपका पात्र खाली हो जाएगा और भक्ति की बारिश हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूं, जिस पर विश्वास किए हो, जिस पर तुमने अपने अपने जिस पर तुमने विश्वास किया है, एक चीज हमेशा देखना, उस विश्वास को बनाए रखना। और उस विश्वास को बनाए रखोगे तो तेरा गुरु इतना क्षमतावान है कि निश्चित ही तेरे जीवन की उन समस्याओं का। और उतने ही नहीं मेरे बच्चों, उतने ही नहीं मेरे बच्चों, मैं तेरी समस्याओं को दूर करना ही मेरा कार्य नहीं है, दूर करते हुए इस भवसागर से पार कराकर परमात्मा से मिलाकर मुक्त कराना भी उनका काम है। जय गुरुदेव। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, गुरु क्षमतावान होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। कारण कि प्रेमी जो है, तुम किसी से प्रेम करते हो उसके लिए कितना जानते हो, कितना खोजते हो। प्रेमी जो है वह अपने प्रेमी का हाथ पकड़ता है तो दुनिया का हर सुख देता है, हर सुख देना चाहता है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसको हर सुख देना चाहोगे, जिसको भी तुम प्रेम करते हो। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी कोई भी मजबूरी, कोई भी तकलीफ तुम नहीं आने देना चाहोगे, हर सुख देना चाहोगे। तो प्रेमी प्रेमी का हाथ पकड़ता है तो हर सुख देता है, लेकिन इसी संसार में रखता है। संसार में यही रखेगा, बस सुख दे देगा, लेकिन संसार के पार लेकर नहीं जा पाएगा, कारण कि उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन जब किसी पर तेरी श्रद्धा होती है, तुम किसी को गुरु बनाते हो, और गुरु जब किसी का हाथ पकड़ता है तो संसार के पार लेकर जाता है। इस संसार को भी ठीक करता है, इस संसार को भी ठीक करता है और संसार के पार भी लेकर जाता है। ये गुरु का कार्य है। तो गुरु हमेशा क्षमतावान होना चाहिए, हमेशा क्षमतावान होना चाहिए, जो हमें इस संसार को सुंदर करते हुए संसार के पार लेकर जाए। देखो इस संसार का भी बड़ा महत्व है। कोई कहता है नहीं तुम तो सिर्फ मुक्ति की बात सोचो। अरे मेरे बंधुओं, जब युक्ति होगी तभी मुक्ति होगी। इस संसार में जितने भी भगवान हुए हैं सभी राजा थे या राज्य परिवार से थे, एक भी बताओ कोई भिखारी भगवान हुआ है? कोई नहीं। क्षमतावान थे, क्षमता थी उनके पास, फिर समता आई और समता आई विसर्जन किया और फिर इस महान से परमात्मा बन गए, महामात से परमात्मा बन गए। तो मेरे बंधुओं, तेरे जीवन की समस्याएं भी दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, और इसके बाद तुम्हें उस पार भी जाना चाहिए। तो एक चीज हमेशा बनाए रखना कि अपने जीवन को पार लेकर जाना। मेरे कंठ सूख रहे हैं, बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि 2 साल बाद बोलने का हुआ है। मेरे बंधुओं, कल मैं सब एक एक करके सबसे सबको आशीर्वाद दूंगा, सबसे मिलूंगा। जय गुरुदेव। आप लोग कोई परेशान मत होइएगा कि आज मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं भी तो अपने बच्चों से 2 साल दूर रहा, एक बार उनको दिल से तो लगा ले। इसलिए बच्चे अपने माता पिता को देखना चाहते हैं, हमेशा रहेगा कि वो अपने पिता को देखना चाहते हैं, लेकिन एक बात जान लेना, माता पिता भी अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। तो मेरे बंधुओं, तुम जो सोचते हो, जो देखना चाहते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। जो गति तोरा सो गति मोरा, जो गति तोरा सो गति मोरा, मैं भी वो देखना चाहता हूँ। तो मेरे बंधुओं, मैं कल सबसे मिलूंगा, और परणा के उपलक्ष्य में आप सब लोग पधारिएगा। इस समाधि के जो समय थे इसमें जो भी शक्तियां मुझे मिली है, जो भी मुझे पुण्य अर्जन हुए हैं, मैं ये सब आपको देता हूं।
जय गुरुदेव। जय।
इसलिए
जय गुरुदेव।
इसलिए मैं पाने के लिए संत नहीं हुआ, मुझे पाना कुछ बाकी नहीं है, क्या आध्यात्मिक क्षमता हो, क्या आर्थिक चीज हो, कुछ भी बाकी नहीं हुआ है, मैं सब कुछ पा लिया इसलिए संत हुआ हूँ। अब देना बाकी है, पाना बाकी नहीं है। अब देना बाकी है और मैं देना चाहता हूँ, और विश्वास रखना थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है, देर हो सकता है अंधेर नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि द्रौपदी जो है, द्रौपदी नहीं रुक्मिणी कृष्ण से पूछती है कि ए कृष्ण तेरा मित्र है सुदामा और इतने कष्ट में है, तुम इन कष्टों से क्यों नहीं निकालते हो। और उसकी पत्नी रोज प्रार्थना करती है कि भगवान आएगा हमारे दुख को दूर करेगा, परमात्मा हमारे दुख को दूर करेगा, और मैं तो जानती हूं कि तुम ही परमात्मा हो और आ भी गए हो और आए ही नहीं उसका मित्र भी हो गए हो, तो तुम मित्र हो उसके साथ हो फिर भी उसको तकलीफ है दुख है इतने कष्ट में है, तुम क्यों नहीं करते हो, क्या लीला है। तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी जहां तक तुम्हें दिख रहा है वहां तक मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक मुश्किल है कि मुझे उसके आगे भी दिख रहा है और पीछे भी दिख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। ये एक बुढ़ी माता के श्राप था कि तुम जन्मों जन्म तक, नौ जन्मों तक तुम भिखारी कंगाल हो जाओगे, और उस श्राप को सुदामा ने स्वयं ले लिया और मुझे नहीं दिया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे आंखों के सामने ये अपने नौ जन्मों के पाप को, कष्टों को काट ले, और फिर जब मैं राजा बनाऊं तो राजा का राजा रहे, फिर राजा बन जन्मों जन्मों के दुखों को काट दे। तो मेरे बंधुओं बहुत बार हम दूसरे जन्मों के कर्मों को काटते हैं, बहुत बार दूसरे जन्म कर्म हमारे हावी होते हैं, और जिसको दिखता है तो दूसरे जन्म के कर्मों को अगर वो नहीं काटे तो फिर अगला जन्म में काटना होगा। मैं सोचता हूं कि मेरे आंखों के सामने तुम उन कर्मों को काट लो और फिर से जब राजा बनो तो यहां भी राजा और वहां भी राजा,
वहां भी राजा, वहां भी राजा। जय गुरुदेव।
कल मैं एक मंत्र भी दूंगा जो इस महासाधना में जो मुझे मंत्र मिला है उस मंत्र को भी दूंगा, आप सब लोग नोट करना उसे और उसकी जाप करना, बहुत बड़ी सिद्धि का मंत्र है, आपको खुद भी सिद्धि होना शुरू हो जाएगा उससे, उसकी जाप करना। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि अगर थोड़े दिन के लिए भी मैं साधना में बैठूं तो आप सब परेशान होते हैं। मेरे बंधुओं एक चीज जानना कि तुम जितने मुझे प्रेम देते हो मैं भी उससे कहीं और ज्यादा तुम्हें देता। जय गुरुदेव। तुम जितने चाहते हो मैं उससे बढ़कर और ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। अंतर इतना है कि तुम मेरे सामने अपने आंसुओं को निकाल लेते हो और मैं वो भी नहीं निकाल पाता हूँ, कारण कि अगर मैं खुद आंसुओं को निकाला तो तुम कमजोर पर जाओगे, तुम कमजोर पर जाओगे। तो मेरे बंधुओं मैं अपने बच्चों को कमजोर नहीं, इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि जन्मों जन्म के कार्यों को पूरा करे और अगला जन्म भी इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने, और भी ऐसे होना चाहे। अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने जीवन को का एक पल भी तुम व्यर्थ में मत गवाना, एक पल भी व्यर्थ मत गवाना, कारण कि तुम्हें जो जीवन मिली है यह बहुत बहुत बड़े कर्मों के बाद, जन्म जन्म के कर्मों के बाद मानव जीवन मिला है। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, तो उनकी बहुत धनात थे, बहुत धनात थे। समय ऐसा आया कि उनके सारे धन खत्म हो गए, वो गरीब हो गए। और मेरे बंधुओं कहते हैं कि अमीरी के सेतु पर उनपती और फनपती हुई सुनहरी घास सबको सुहाने लगते हैं, सबको सुंदर लगते हैं, लेकिन अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी बुरी होती है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो गरीब हो गए तो उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम इतने गरीब हो गए हो, एक काम करो, यहां का जो राजा है वो तो तुम्हारा मित्र है, एक बार जाओ ना, वो तुम्हारी मदद करेगा, निश्चित तो तुम्हारी मदद करेगा, एक बार जाकर के तो देखो, जाओ एक बार। सेठ ने कहा कि नहीं, हम बच्चे थे तो एक दूसरे के मित्र थे, आज राजा इतने बड़े हो गए हो, मुझे पहचानेंगे भी नहीं, क्या पता है तो मैं क्यों जाऊं। तो पत्नी ने कहा, नहीं तुम जाके देखो, राजा तुम्हें जरूर पहचानेंगे, तुम्हें जरूर पहचानेंगे राजा। तो उस सेठ ने अपनी पत्नी का बात माना और जाकर के राजा के यहां गया, तो दरबारियों ने अंदर नहीं जाने दिया। उसने अपना नाम बताया कि मेरा ये नाम है, अब राजा से कहना। जब ये नाम सुने तो राजा खुद चलकर आए और उस सेठ को लेकर गए और अपने बगल के कुर्सी पर बैठा दिए। सभा लगी थी, बात बीत गई, रात्रि के समय राजा ने कहा कि तुम्हारी स्थिति मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्यों ये तकलीफ क्यों आए। तो उसने सब बातें बताई। तो राजा ने कहा, एक काम कर, कल तुम मेरे भंडार में चले जाना, 2 घंटे के लिए मैं तेरे भंडार को खोलूंगा, उस भंडार को, और उसमें हीरे ज्वरात रत्न पड़े हैं, जितना चाहो उतने रत्न निकाल लेना, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही चले जाना वहां से, नहीं तो फिर दरवाजा बंद हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सेठ ने कहा, अच्छी बात है। सेठ झोला लेकर के गया और वहां राजा का दरबार खुला, खजाना खुला, वहां सारे रत्न पड़े थे। सेठ गया और कहा कि इसको निकालता हूं, लेकिन क्या 10 मिनट लेंगे, निकाल लूंगा, अभी 2 घंटे पड़े हैं, तब तक उसको बचपना का खिलौना दिखा वहां, तो खिलौना दिखा तो खेलने लगा, खेलते खेलते ऐसे विस्मृत हुआ कि 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे पूरे हो गए लेकिन वो खेलना खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वो दौड़े दौड़े आया और रत्न को उठाने लगा, तो दरबारियों ने कहा, दरवाजा बंद हो चुका है, अब आप नहीं उठा सकते हैं, आपका समय बीत गया है, 2 घंटा पूरा हो गया। बड़ा उदास हुआ, लौटा राजा के पास, राजा उसके चेहरे देख के समझ गए कि ये उदास है, इसको कुछ मिला नहीं है। तो राजा ने कहा, कल एक काम करो, मेरे दरबार में आना, मैं सोने का खजाना खोल दूंगा और 2 घंटे में जितना सोना तुम लेकर जाना चाहते हो तुम लेकर चले जाना। राजा ने बड़े बड़े झोले लिए और आए और कहा, ऐसा करता हूं कि सोना भर लेता हूं, नहीं तो हमेशा कल रत्न छूट गया। तो उसने कहा कि यह झोले में सोने उठाए, भरे और रखा, कहा कि ये तो 10 मिनट में पूरे हो गए, अब तो बचा, अभी तो बचा समय 1 घंटा 50 मिनट है, एक घंटा 50 मिनट है, अब तो इसमें तो बहुत काम है। तो उसने देखा कि एक घोड़ा था जो बचपना में उस घोड़े पर चढ़ा करता था राजा के साथ, तो उसने कहा कि एक बार मैं घोड़े को दौड़ा लेता हूं। तो उसके मन में आया और स्वर्ण वहीं रखा और घोड़े पर चढ़ गया और दौड़ाने लगा। अब वो घोड़े हवा से बात करने लगा, इतना दूर चला गया वो घोड़ा, एक कंट्रोल भी करना चाहता नहीं हो कि लौटते लौटते 2 घंटा 10 मिनट हो गया, वो नहीं पहुंच पाया और दरवाजा बंद हो गया और सोना अंदर का अंदर ही रह गया। फिर वो लौटा, अब राजा से आंख भी नहीं मिला पा रहा था, कारण कि वो समझ गया था कि अब गलती मेरी है, राजा कितना देगा। लेकिन फिर भी राजा ने उसे देखा और कहा, ये तो फिर भी दुखी रह गया, कुछ भी नहीं उठा पाया, कुछ भी नहीं उठा पाया। तब कल उसने कहा कि एक काम करना, कल तुम मेरे खजाना में जाओ और चांदी का खजाना खुलेगा, जितना मन करे उतना भर लेना, जितना मन करे उतना भर लेना। उसने कहा ठीक है। उसने बोरे लाए, 5-7 बड़े बड़े बोरे लाए और कहा, आज मैं ये गलती नहीं करूंगा, आज मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। और चांदी के बोरे बोरे में पूरा चांदी को भरा, आधे घंटे में भर लिया। जब निकलने लगा तो एक जाल लगा था उस दरवाजे के पास और उसमें लिखा था कृपा करके तुम हाथ मत अटकाना, हाथ मत डालना, अगर हाथ डालोगे तो उलझ जाएगा और उलझ जाएगा तो सुलझाने में बहुत समय लगेगा, नहीं भी उलझ सकता है, इसलिए हाथ मत डालना। उसने उस व्यापारी ने सोचा कि क्या है हाथ डालने से उलझ कैसे है, तो जाल है, मैं तो बोरा में भर ही लिया हूं, एक बार देखता हूं। उसको टच किया, छुआ, हाथ उलझ गया। अब दूसरे हाथ से सुलझाने जाए वो भी उलझ गया, अब दोनों हाथ उसमें फंस गए। अब उसको सुलझाते सुलझाते ऐसे हुआ कि 2.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा 30 मिनट बीत गया और वो सुलझा नहीं पाया। फिर से वो दरवाजे बंद हो गए और चांदी न मिले। अब तो वो सोचा कि बिना राजा को देखे ही मैं भाग जाऊं, कितना शर्म की बात है, राजा ने इतनी मेहनत इतना मेरे लिए किया और मैं इतना अभागा हूं कि कुछ भी नहीं ले पाया। राजा जान गया इस बात को, फिर उसको बुलाया, कहा कि जा, हो सकता है सोना चांदी जोरा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन जा एक काम कर, कल मैं तांबे का गोदाम खोल देता हूं, जितना तांबा मन करे उतना भर लेना, जा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। तब कल होकर के उसने क्या किया कि बड़े बड़े 2 गाड़ियां लेकर आए और उसमें बड़े बड़े 20 बोरे लेकर आए और कहा कि अब तो मैं भरूंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। उसने बोरे में भरा भरा और उठा करके अपने गाड़ियों में लादने लगा। तो 10 लादा था, तब तक उसके कमर में दर्द आए। तो उसने कहा अरे दर्द आया है, मुझे तो बड़ा तकलीफ है। वो देखा कि वहां एक बिछावन लगा हुआ है सुंदर। तो उस आदमी ने सोचा कि राजा हो सकता है मेरे लिए लगाया हो, थक जाऊंगा इतना ढो करके तो आराम कर लूंगा। वो क्या किया, यही सोच करके उस बिछावन पर सोया अपने थकान मिटाने के लिए। अब सोया तो 3 घंटा सोए रह गया, नींद ही नहीं खुली। अब ऐसा हुआ, फिर से वो दरवाजा बंद हो गया, उसके सामान अंदर चला गया। अब वहां से वो उठा और राजा को भी नहीं देखा, पीछे पांव भागा, भागते चला गया अपने घर और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे भाग्य में भी कुछ भी नहीं है, राजा ने सब कुछ दे दिया तब भी मैं खाली हाथ लौट कर आया हूं, तो उसकी पत्नी ने पूछा हुआ क्या, तो ये बातें हुई। मेरे बंधुओं, ये कोई एक सेठ की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, ये सिर्फ एक सेठ की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। मैं सुना हूं कि एक बार चाणक्य ने एक व्यक्ति से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उसने कहा पता नहीं। तो कहां जाओगे, तो उसने कहा पता नहीं। कहां से आ रहे हो, तो बोला कि पता नहीं। तुम कौन हो, तो बोला कि पता नहीं। तुम किस लिए जा रहे हो, तो उसने बोला कि पता नहीं। तो तुम्हें समय का महत्व भी पता है, तो बोला पता नहीं। तो चाणक्य ने कहा तो कुछ भी पता नहीं है तो फिर भी जीते जा रहे हो, तो उसने कहा कि संसार के 700 करोड़ को कुछ भी पता नहीं है फिर भी जीते जा रहा है, उसके पीछे मैं भी जीते जा रहा हूं। कुछ भी पता नहीं है मेरे बंधुओं, तेरे जीवन का एम पता नहीं है। तुम धन कमाते हो और कमाते कमाते जाते हो, एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़कर चले जाते हो। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति का नाम बताओ कि जो 100-200 करोड़ अपने साथ लेकर गया होगा, 1 रुपया भी साथ लेकर गया होगा। ए मेरे बंधुओं, अगर तुम्हारे गले में सोने का चैन है तो जो तुम्हारा सबसे नजदीक है पर वही निकालेगा, वो भी नहीं जाने देगा कि जाके क्या होगा। तुम इस सब हमारे जीवन का की घटना है। बचपना हम खेल में गंवा देते हैं, जवानी हम दौड़ धूप में गंवा देते हैं, यहां दौड़ते वहां दौड़ते कमाने में। थोड़ा और बड़े होते हैं, परिवार होता है, शादी ब्याह होता है, तो हम उस जाल में एक हाथ डालते हैं और एक दो बच्चा होता है तो दूसरा हाथ डालते हैं, उसी जाल में फंसे रह जाते हैं गृहस्थ आश्रम के। और जो चौथी घटना है बुढ़ापा की, कमर में दर्द और बीमारियां शुरू होती है तो सोकर गंवा देते हैं, चारों पंथ हमारा ऐसे ही चला जाता है। मेरे बंधुओं, तुम उसको मत गंवाना, कारण कि तुम आ गए हो और उस दरवाजे पर आ गए हो कि जहां उसको पार करने की बातें सिखाई जाती है, तो बिन सीखे मत जाना, उसको सीख करके ही जाना।
जय गुरुदेव।
उसको पूरा करके ही जाना मेरे बंधुओं, कारण कि اب یہاں نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ اب اگر یہاں نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ تو وہ کر کے جانا، اپنی وشواس اور بھکتی بنائے رکھنا، جیون میں ہر خوشیاں پرماتما آپ کو دے، اور آنند کی طرح ہمارے مہاویر کے شش آنند، انہوں نے اپنے جیون میں جو کچھ پایا مہاویر کے کارن پایا، میرے بندھو پھر بھی ان کی یاترا چلتی رہی، تو آپ بھی اپنے جیون میں اپنے گرو کے ساتھ آگے بڑھنا، اور اتنا آگے بڑھنا کہ گرو سے بھی آگے بڑھ جانا، اگر بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے تو باپ کو بڑا بڑا ہی خوشی ہوتی ہے، سینہ 56 انچ کا سینہ ہوتا ہے کہ واہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو میرے بندھو جس دن تم اپنے جیون میں مجھ سے اوپر نکلو گے، مجھے بھی وہ گرو ہوگا کہ واہ میرا بھی بچہ مجھ سے بڑا ہو گیا۔ آپ ضرور نکال دیں۔ رہی بات چھوٹی موٹی سمسیاؤں کی، وہ بھی دور ہوگی، وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اب میں آ گیا ہوں، پھر ڈرنا کس بات
سے؟ گرو بھگوان کی جے، کالی پرم سے بھگوان کی جے، کالی پرم سے بھگوان کی جے، کالی پرم سے بھگوان کی جے،
جے جے
جے
جے جے
Why you fear? God is here. کیوں ڈرتے ہو؟ پرماتما تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے، ڈر مت، یہ جیون پورا ہو جائے گا۔ جیون میں نہ کچھ لے کر آئے تھے اور نہ کچھ لے کر جاؤ گے، اس جیون جینے کے لیے سب کچھ چاہیے اور وہ ملتا جائے گا، مت گھبرانا۔ کارن کی چیٹیوں کو بھی تو کھانا مل جاتا ہے، پرماتما اس کو بھی بھوکے نہیں سونے دیتا ہے، اس کو بھی تو مل جاتا ہے۔ اور تمہاری سمسیائیں تمہیں اور مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے، وہ اور مضبوط بنائے گی تمہیں اور اچھی کرے گی۔ میں پھر سے اپنے ہردے سے آپ سب کو منگل کامنا دیتا ہوں کہ میری ساری پنیہ جو میں نے ارجن کیا ہے وہ سب آپ کو ملے، آپ لوگوں کو ملے، آپ کی سمسیائیں دور ہو، آپ اچھے رہیں، آگے بڑھیں، اور جیون میں سب کچھ سفل کرتے ہوئے اس سنسار سے مکت ہوں، کہ لوگ یہ بھی کہے کہ کس گرو کے شش ہے کہ آج اپنے جیون کو سارتھک کرتے ہوئے مکت ہو گیا ہے۔ میرے بندھوؤں، کہیں بھی کوئی نگیٹو، کہیں بھی کوئی ویروھ، کہیں بھی کوئی بری چیزیں مت کرنا، کارن کی اگر کہیں بھی کوئی چھوٹے کیے تو تم چھوٹے بنتے جاؤ گے، چھوٹے ہوتے جاؤ گے، پھر بھگوان کوچوان نظر آئے گا، کوچوان بھگوان نظر نہیں آ سکتا، نہیں تو کوچوان میں بھی بھگوان ہے۔ تو میرے بندھوؤں، اپنے جیون کو سندر کرو، آگے کا باہر کا پوجا بھی باقی ہے، آرتی بھی باقی ہے، شوارتی کریں، اور آج جاگرتی کا دیوس ہے۔ مہا شیوراتری میں کہتے ہیں کہ آدمی کو سونا نہیں چاہیے، جگنا چاہیے، جاگرت رہنا چاہیے۔ جگنے کا یہ ارتھ نہیں کہ صرف آنکھ کھول کے جگے رہو، جگنے کا ارتھ ہے کہ جیون میں جاگرتی لاؤ، کانسیس لیول لاؤ، سپر کانسیس لیول لاؤ، ڈیوائن کانسیس لیول لاؤ، ایسی جاگرتی میں رہو کہ شیو جو جاگرتی کو بانٹتے ہیں، جو شیو کا دھیان ہے، شیو کی جو جاگرتی ہے وہ تمہیں پراپت ہو۔ دکشن بھارت میں ایک بڑا سندر نیم تھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ مہا شیوراتری کے دن لوگ دوسرے کے گھر پر پتھر چلاتے تھے، مٹی کے ڈھیلے چلاتے تھے، اس لیے کہ وہ جاگ جائے، اس کو ڈسٹرب ہو، جاگ جائے، سونے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو آج جاگرتی کا دیوس ہے، پورا جگ کر کے تم شیو ابھیشیک کرنا، مہا شیوراتری منانا، اور شیو کے برات میں آئے ہو، اب کیا ڈر، شیو کے برات میں آئے ہو۔ اور میرے بندھو ہو، ایک چیز دیکھ لینا، اگر یہاں کے مکھ منتری کے بیٹے کا شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو اور تم کو مکھ منتری انویٹیشن دے کے بلائے ہیں، تو ایک بات بتاؤ، کسی بھی کانسٹیبل کو اور کسی بھی تمہارے جو پولیس والے ہیں، جو پولیس والے ہیں، جو ٹریفک پولیس ہے، ان کو مجال ہے کہ تیرا فائن کر دے یا تیرے گاڑی کو ہٹا دے؟ ارے تم مکھ منتری کے یہاں جا رہے ہو، پردھان منتری تمہیں بلائے، کسی فنکشن میں گئے ہو تو ان کے پیون کا مجال ہے کہ تمہیں روک دے؟ नहीं तो मेरे बंधुओं जब तुम मुख्यमंत्री के कार्य में जाते हो, उनके किसी कार्य में सम्मिलित होते हो, तुम उनके अतिथि होते हो और जाते हो तो तुम्हारी इतनी सम्मान होती है। आज तो संसार के मुख्य, संसार के देव नहीं महादेव जयंती है और उसमें तुम आए हो तो तुम कितने बड़े हो गए हो सोचो। आज महादेव जयंती है, महाशिवरात्रि है, जो देवों को देव, देवता ही नहीं, देवता ही नहीं, देवों के देव महादेव, जो सारे संसार को देता है, जो सारे सृष्टि को देता है, तुम्हारे हर बुराइयों को मिटाता है, खत्म करता है, संहार करता है, उस महादेव के बारात में आए हो और शिव के बारात में सब लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, सांप भी होगा, बिच्छू भी होगा, नेवला भी होगा, शेर भी होगा, बकरी भी होगा, राक्षस भी होगा, देवता भी होगा, मनुष्य भी होगा, हर तरह के लोग आएंगे, ये शिव की बारात है, ये निश्चित ही आएंगे। तुम घबराना मत, तुम घबराना मत, शिव की बारात है, सब आएंगे और अपने अपने कार्यों को करके फिर चले जाएंगे। कारण की बारात तो शिव की है, बारात तो शिव की है। आज इस शिव के बारात में आए हो, पूजन करना, अभिषेक करना और अपने कार्यों को पूरी सफल करके जाना। जो भी तुम्हारी कठिनाई है, जो भी दुख है, निश्चित ही शिव आज दूर पूरा करेंगे। कारण कि किसी के विवाह के सालगिरह में जाते हो, आप कोई गिफ्ट देते हो तो भी आपको रिटर्निंग गिफ्ट देता है, रिटर्निंग गिफ्ट देता है। एक बात बताओ, एक आदमी रिटर्निंग गिफ्ट दे सकता है तो क्या भगवान ऐसे जाने देगा? भगवान तुमको खाली हाथ जाने देगा? वह भी देगा, बस एक ही अंतर है कि कागज के गिफ्ट तुम्हें रुपये के गिफ्ट दिख जाता है और उसका गिफ्ट देखने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन वो तो नाश्वर है और परमात्मा का गिफ्ट शाश्वत है। तो ऐसा आज गिफ्ट देकर जाना, ऐसी पूजा करके जाना कि परमात्मा जन जन को तेरे, तुमको, आप सबको रिटर्निंग गिफ्ट दे, सबको। एक बार बोलो, हर हर महादेव,
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 हर हर महादेव।
गुरुदेव, आज तो प्रथम दिवस का जो प्रथम प्रहर की जो आरती हुई, तो वो तो आरती हो चुकी। भगवान, हम तो शिव और गुरु, गुरु और शिव, उन सब के साथ मेरे हाथ से आरती उतारे, बोले कि नहीं? अब आरती की कहाँ जरूरत है प्रथम प्रहर की?
नहीं जरूरत।
जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुवानंदा, 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 जय गुरुदेव, गुरुवानंदा। ओम सर्वेश्वराय,
आदिपर सर्व विघ्न विनाशिने, ब्रह्म ऋषि गुरुवे नमः। ओम अरहं, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवानंदाय नमः।
जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, जय गुरुदेवा गुरुवानंदा,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव,
प्रभु आप ही गुरु है, आप ही महादेव है, आप ही विष्णु है, आप ही ब्रह्म है। और पूरा विश्वास था मैं हार जाऊंगे कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में पिता सो नहीं सकता बेटा, दुख में पिता सो नहीं सकता। और हम जानते हैं बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तू मेरे साथ है गुरुदेव, सर में तेरा हाथ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने गुरु भक्त बैठे हैं, गुरुदेव पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं। 22 महीने भले ही बीते लेकिन रोज उनको इंतजार था कि आज तो प्रभु आएंगे दर्शन लेंगे।
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। वो गुरुदेव जब तू मेरे साथ है
सुरताल हो
मंगल तेरा ये लाल हो ना हो।
आज की रात में ये है मुझे बस आपसे बात करने के लिए, कल का तो आप ही जाने, हम तो जानते नहीं।
तेरी कृपा से ही मुझे दरबार ये मिला, मेरे नसीब से चला परसों ये सिलसिला।
मैं कैसे शुक्रगुजार बनू, बनू कैसे
मेरे भजन
गुरुदेव
मन में उठे सवाल है कैसे दबाऊं मैं, मन में उठे सवाल है कैसे दबाऊं मैं, दिल के मेरे जज्बा गाकर सुनाऊं मैं, शायद ये दिल में फिर कोई सवाल
आए
किसको बदल मेरा ये लाल हो ना, मेरे
बुरे
तुमको पाया तो ये निखारा, टूटे दिल को करार आया, टूटे दिल को मेरे
करार
पाया तो ये खाराया।
आप इतने उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव सुदामा,
नहीं नरसी नहीं सुदामा, नहीं नरसी नहीं सुदामा मैं, भी बन पे तू मेरा यार, फिर भी बन पे तू मेरा यार, टूटे दिल को मेरे, टूटे दिल को मेरे करा
जो रहे हो।
गुरुदेव हमेशा आशीर्वाद इस मुस्कुराहट के साथ लिखे रहते हैं कि गुरुदेव आपके होते हमें कोई डर है ही
नहीं, हमको तो डर नहीं है पतझड़ का,
चाहे कैसे भी मौसम आ जाए हम घबराते नहीं है क्योंकि हम तो आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं।
हमको तो डर नहीं है पतझड़ का,
क्यों
बन के जीवन में तू बहार,
बन के जीवन में तू बहार,
टूटे दिल को मेरे करा एक दिन आप हमको मिल जाए, फूल ही फूल राम में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था जिंदगी मेरी यूं ही संवर जाएगी,
तेरी कृपा मुझ पे बरस जाएगी।
मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था,
मैंने
सोचा न था।
गुरुदेव आप ही ने कहा था आप गले से लगाएंगे।
की जय, जय गुरुदेव।
नहीं तोड़ता मैं, किसी को तोड़ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ भाव से आपके गले लगना चाहता हूँ गुरुदेव।
गले से लगा लो ओ गुरुवर, गले से लगा लो तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना तुम्हारे सिवा, मुझे अपना बना लो ना।
लेकिन गुरुदेव का आदेश है ना, तो हम जरूर मानेंगे। आइए झूमते हैं शिव जी की बारात में।
ओ महादेवा, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोले नाथ रे ओ शंभुनाथ रे,
शंभुनाथ रे। बम बम की धुन में खो गया काबड़ी को।